प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात, प्रायोजक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कानून की बात, कानून की बात। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा, वैवाहिक अपराध, घरेलू हिंसा, गरीब, असहाय और विधिक सहायता से वंचित लोगों को दी जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श की जानकारी। आइए सुनते हैं आज की कड़ी।
विधिक सेवा प्राधिकरण
अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है,
वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है,
लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है
और वो भी बिल्कुल मुफ्त।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय, बेहतर समाज।
अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें
या टोल फ्री नंबर 1500 पर फोन करें।
कानून की बात कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे बाल विवाह पर। बाल विवाह क्या होता है, इसको किस तरह से शून्य घोषित किया जा सकता है और इसके लिए किसे दंडित किया जा सकता है और न्यायालय इसके लिए क्या कर सकता है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं तोषिता मालानी जी, आप उप सचिव हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। क्योंकि शादियों का मौसम है और इस दौरान विवाह होते हैं, विवाह होने के साथ साथ कुछ बाल विवाह भी हो जाते हैं। अभी भी राजस्थान में कई क्षेत्रों में बाल विवाह काफी हो रहे हैं, तो बाल विवाह नहीं चाहते हुए भी माता पिता कर देते हैं। बाल विवाह क्या है, कितनी उम्र तक के बच्चों का बाल विवाह माना जाता है, इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए तोषिता मालानी जी स्वागत है।
नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा देश में बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करना या रचना एक संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है।
जी, बाल विवाह मान लो इस उम्र से पहले कर दिया, क्या इस तरह के बाल विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है?
जी हाँ बिल्कुल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में विशिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अगर किसी बालक या बालिका का विवाह निर्धारित आयु से पूर्व किया जाता है तो वह बालक अथवा बालिका अपने विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है और उसके वैधता प्राप्त करने से 2 वर्ष की अवधि गुजरने से पूर्व में उसके द्वारा यह आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर किसी न्यायालय ने बाल विवाह को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी है और निषेधाज्ञा जारी करने के बावजूद भी अगर कोई बाल विवाह कर दिया जाता है तो उस सूरत में इस प्रकार किया गया बाल विवाह करने के साथ में ही शून्य होता है, यानी कि उसे शून्य घोषित कराने के लिए पृथक से कोई भी कार्रवाई करने की उसे आवश्यकता नहीं होती है।
तो श्वेता जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, अगर कोई बाल विवाह होता है और कोई भी वयस्क होता है यानी जो पुरुष है 23 वर्ष तक और अगर महिला है वो 20 वर्ष की उम्र तक यानी वयस्क होने के 2 साल उपरांत तक इसके लिए न्यायालय में आवेदन कर बाल विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। अब बात आती है बाल विवाह में दंडित करने का, तो क्या इसमें कोई सजा का प्रावधान है? यदि बाल विवाह माता पिता ने या किसी ने भी किया है या किसी की अनुपस्थिति में, किसी की उपस्थिति में बाल विवाह हुआ है तो उनको क्या दंडित किया जा सकता है?
जी हाँ बिल्कुल, अधिनियम में 2 प्रकार के प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और अगर वो बाल विवाह करता है यानी खुद विवाह का पक्षकार होता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार विवाह करने वाला व्यक्ति 2 वर्ष तक की सजा और 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का दायी होगा। और इसी प्रकार अगर अन्य व्यक्ति यानी कि माता पिता, आपके संरक्षक या अन्य कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करता है, करवाता है, उत्प्रेरित करता है या संचालित करता है या उसमें भाग लेता है और वह जानता है कि वह बाल विवाह हो रहा है तो ऐसी सूरत में इस प्रकार भाग लेने वाले सभी व्यक्ति 2 वर्ष तक के कठोर दंड से व 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने तक के लिए दंड के भागी हैं।
और कुछ आप बताना चाहेंगे कि सजा के तौर पर क्या 2 वर्ष की सजा और 1,00,000 जुर्माना बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये प्रावधान होने के बावजूद भी राजस्थान में देखा जाए तो बाल विवाह हो रहे हैं, हम जितना प्रभावी तरीके से उनको रोकना चाहिए नहीं रोक पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
बेसिकली हमारे राजस्थान का, जैसा कि हमारे रूढ़ीवादी राज्यों की श्रेणी में राजस्थान आता है, और आज भी हमारे यहाँ पे बालिकाओं को एक मजबूरी, एक जिम्मेदारी, एक बोझ समझ करके ही पाला जाता है। और ये सोचा जाता है कि जैसे ही ये मजबूरी, ये जिम्मेदारी या बोझ हमारे सर से उतरेगा, हम गंगा नहाएंगे। तो इसी सोच के साथ ही आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेश में निवास करने वाले लोग लड़कियों को, बच्चियों को बढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। जब तक कि हमारी ये मानसिकता नहीं बदलेगी, हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक ये बाल विवाहों की रोकथाम होना मुश्किल कार्य है। और लोग ये सोचते हैं कि इसको दो तीन चीजों से जोड़ के सोचते हैं कि बचपन में ही शादी कर देंगे तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। ये सोच के चलते हैं कि अगर हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा ये पढ़ लिख जाएगी तो और ऊंचे पद की पर जाएगी, तो हमें उसके स्तर का ढूंढना पड़ेगा, यानी हमें दहेज और देना पड़ेगा। यानी उसको एक दहेज के साथ में जोड़ के देखते हैं कि अगर दहेज देना पड़ेगा इसलिए इसको छोटी उम्र में ही ब्याह देंगे तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे। तीसरा, ये सोच के चलते हैं कि इसको ज्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे या बाहर जाएगी तो ये बिगड़ सकती है। तो इन संभावनाओं को देखते हुए लोगों के बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, और ये मान के चलते हैं कि हम जितनी जल्दी इस जिम्मेदारी से मुक्त हों या हमारे सर से बोझ उतरे तो हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। इसी वजह से हमारे राजस्थान में आज भी बाल विवाह है, और जैसे पीपल, पुन्यू, बरला, न्योमू और हमारे जितने भी ये अबुझ सावे होते हैं उन पर बाल विवाह बहुत आयत संख्या में होते हैं। यद्यपि राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रभावी प्रावधान किए गए हैं, 2 साल के सजा का प्रावधान भी, 1,00,000 रूपये जुर्माने का प्रावधान भी है, और न्यायालय के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा जारी भी की जाती है, लोगों को पाबंद भी किया जाता है। राज्य सरकार ने जैसा कि उपखंड मजिस्ट्रेट को इसमें बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी घोषित किया हुआ है, और उनकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी की गई है कि के क्षेत्र विशेष में बाल विवाह नहीं होने दें, अगर होने की संभावना हो तो न्यायालय में जाएं, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें, और फिर भी हो जाता है तो उस बाल विवाह को शून्य माना गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहां होते हैं, उसके पीछे हमारी ये रूढ़ीवादी सोच ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जिस वजह से हमारे राजस्थान में आज भी बाल विवाह होते आ रहे हैं।
रूढ़ीवादी सोच के कारण राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, लेकिन कभी भी हम बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा नहीं करते। तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं बाल विवाह के, इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
देखिए, बाल विवाह का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि आज हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य है बच्चे, और बचपन में अगर किसी बच्चे का बचपन छीन लिया जाए तो हम हमारे देश की क्या भविष्य होगा, ये हम खुद सोच सकते हैं। सबसे ज्यादा दुष्परिणाम बाल विवाह के बालिकाओं को झेलने पड़ते हैं, जब उनकी बालक उम्र में जो हंसने खेलने, खाने, पढ़ने लिखने की उम्र है, उसी समय अगर उनकी शादी कर दी जाती है तो घर परिवार की जिम्मेदारी में आ जाते हैं। और उन सबकी परिणति ये होती है कि कम उम्र में उनका गर्भ धारण हो जाता है और वो बच्चे को लेती, जो खुद बच्चा है वो एक बच्चे की माँ बनने जाता है, और बच्चे जो उस बच्चे से वो बच्चा आने वाला होता है वो भी मैलनरिश्ड होता है। यानी कि हम दो तरह से दो बच्चों का फ्यूचर खराब करते हैं, एक तो जो बचपन में माँ बनने वाला है, और दूसरी वो जो उस बच्चे से जन्म लेने वाला है। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम फिजिकली जो हमारी लड़कियां झेलती हैं, ये हम सबसे ज्यादा देखने में आया है। और हमारे जैसे हमारे नेशनल स्वास्थ्य सर्वेक्षण ब्यूरो के जो डेटाज बोलते हैं उसमें भी यही आया है कि सबसे ज्यादा डेथ जो हमारी प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसमें सबसे ज्यादा माइनर गर्ल चाइल्ड की होती है, जो कि बाल विवाह के शिकार है।
अब बात करें बाल विवाह निषेध अधिनियम की, आपने बताया है, क्या है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा सा बताएं।
देखिए, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। बाल विवाह जो करेगा उस व्यक्ति को पुलिस प्रथम उस प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, यानी कि थाने में कार्रवाई हो सकती है, और ये गैर जमानती है, यानी कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, जमानत आपको न्यायालय से ही मिलेगी। दो प्रकार के प्रकरण होते हैं, पहला प्रकरण जिसमें पुलिस जमानत दे सकती है, और दूसरा प्रकरण जिनमें आपको कोर्ट से जमानत करानी पड़ती है। यानी कि गंभीरता को देखते हुए इस अपराध को गैर जमानती बनाया गया। दूसरी स्थिति आती है कि न्यायालय की इसमें क्या भूमिका रहती है। न्यायालय की सर्वोत्तम भूमिका तो यह है कि न्यायालय को अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से या स्वप्रेरण से ये जानकारी होती है कि अमुक बाल विवाह होने वाला है, तो इस स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। यानी कि उन व्यक्तियों को पाबंद कर सकता है जो बाल विवाह करने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं, या उत्प्रेरित कर रहे हैं, या उसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये न्यायालय के पास में अबुझ शक्ति है जिसके माध्यम से वो बाल विवाह को रोक सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि अगर बाल विवाह हो भी जाता है तो उस स्थिति में न्यायालय की क्या भूमिका रहती है। उस स्थिति में न्यायालय की भूमिका यह रहती है कि अगर बाल विवाह का कोई भी पक्षकार जो कि बालक है, महत्वपूर्ण बात यहां है कि बाल विवाह का वही पक्षकार विवाह को शून्य करनीय घोषित करवाने के लिए न्यायालय में आ सकता है जो कि विवाह के समय अवयस्क हो अकॉर्डिंग टू दी कानून। तो वो न्यायालय में उस विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरी स्थिति ये आती है कि जब न्यायालय में शून्य घोषित कराने के लिए आवेदन आता है, तो उस स्थिति में अगर कोई दोनों पक्षकारों के बीच में जो विवाह के समय लेन देन हुआ है, जो सामान दिया गया है, या तो वो सामान उन पक्षकारों को लौटाएंगे अथवा उतनी ही राशि वो दूसरे पक्षकार को लौटाएंगे। और अगर बालिका है माइनर जिसका बाल विवाह हुआ है, तो उस स्थिति में बालक वर्ग के उसके भरण पोषण की, उसके रहने की व्यवस्था करेंगे। यानी कि उनकी जिम्मेदारी है कि आपने बाल विवाह कर लिया, उससे ही आपकी मुक्ति नहीं मिल गई कि आपको सजा हो गई और आपको जुर्माना। यहां पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है पुरुष पक्ष की कि वो उस बालिका का भरण पोषण करें, उसके रहने की व्यवस्था करें। और इससे भी विकट परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाल विवाह से कोई संतान उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई संतान उत्पन्न हो गई है तो इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि उस बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी पुरुष पक्षकार की रहेगी।
जी, ये तो आपने कानूनी पक्ष बताया, न्यायालय क्या कर सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से हम सोचें तो क्या होना चाहिए कि बाल विवाह नहीं हो।
बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए सबसे बड़ा सबसे अचूक इलाज यही है कि हम लोगों में जागरूकता लाएं। आज हमारे देश में जितनी भी हमारा देश पुरुष प्रधान समाज है, और इस सत्य को हम नकार नहीं सकते, आज भी हमारी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। चाहे वो बराबर कमाती हों, बराबर स्टेटस रखती हों, बराबर स्थिति में हों, लेकिन आज भी हमारी सोच कहीं ना कहीं पुरुषों पर आकर के अटक जाती है। आज घर में कब सब्जी क्या बनेगी, ये डिसीजन ये होता है कि पति को क्या पसंद है, बेटे को क्या पसंद है, या मेरे ससुर को क्या पसंद है, सोच वहीं रहती है। और जब तक हम इस सोच पर काम नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि हाँ, बालक और बालिका बराबर है और उनको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, जो काम एक बालिका कर सकती है वो बालक भी कर सकता है। आज कोई भी अगर घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको पानी पिलाने की जिम्मेदारी एक बालिका को होती है। अगर किसी माता पिता के दो संतान हैं, एक पुरुष और एक लड़का और एक लड़की, तो अगर कोई गेस्ट आता है, ये जनरल सामान्य बात से मैं बता रही हूं आपको कि जनरली ये होता है कि हम लड़की को कहेंगे कि तू पानी पिला। और यही एक सोच है जो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी में भी रन करती है, सो कॉल्ड मिडिल क्लास में भी रन करती है, और सो कॉल्ड हमारी पुअर फैमिलीज में भी रन करती है कि हमेशा हमारे यहाँ पे मैन डोमिनेशन रहता है। और यही हमारे देश में कुरूतियों के, चाहे वो बाल विवाह हो या कोई भी एक्स वाई जेड कुरूति हो, उसके पीछे उत्तरदायी है। और अगर हम जागरूकता लाएंगे तो नेचुरली इन सब चीजों से ऊपर उठ करके हम हमारे देश के विकास के बारे में, समाज के विकास के बारे में, व्यक्ति के विकास के बारे में, और उस बालिका के बारे में सोच सकेंगे जिसको शायद हम गर्भ में ही कई बार मार देते हैं और पीसीपीडीटी एक्ट में कार्रवाइयां चलती हैं।
एक छोटा सा नारा सरकार ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना चाहेंगे? जागरूकता लाने के लिए बहुत बड़ा ये नारा है, अगर इस पर हम काम करें तो।
बिल्कुल बिल्कुल, ये अचूक बात है कि हाँ, हमारे देश में सरकारें, लोग, प्रबुद्ध लोग सभी बच्चियों के बारे में काम कर रहे हैं। और मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हाँ, यहाँ बिल्कुल काम करने की जरूरत है। राइजिंग इंडिया जो हमारे विदेशों में सभी कहते हैं कि हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ये सहायक पक्ष भी है कि आज भी हमारे देश में डिस्पैरिटीज हैं, असमता है, विषमता है, बहुत कुछ है।
जी, अब बाल विवाह, इसमें जिनका बाल विवाह होगा, क्या कुछ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भी इनसे पीड़ित पक्ष या उनके लिए कुछ कार्रवाई की जाती है?
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अप्रैल, मई व जून, तीन महीना, फिर उसके पश्चात नवंबर, दिसंबर व जनवरी में कुल 6 महीने हमारे यहाँ पे बाल विवाह प्रतिषेध अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत हम सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो बाल अधिकारिता विभाग हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे हमारे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो कि उपखंड मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है, उन सभी को इनके कार्यों के प्रति सजग करने हेतु कार्य करते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा जागरूकता कैंप्स का आयोजन किया जाता है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी, लोगों को आप उस कुरूति के बारे में नहीं बता पाएंगे। लोगों को आज भी जानकारी नहीं है कि बच्चों का विवाह करना अपराध है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये मान के चलते हैं कि अभूत सावा है, उस दिन विवाह कर देंगे तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। इसीलिए हमारे यहाँ महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण गतिविधि जागरूकता अभियान का संचालन किया जाता है। हमारे यहाँ पे 8 मोबाइल वैन्स हैं, जिनमें हम पैरा लीगल वॉलंटियर्स, पैनल एडवोकेट्स व साथ ही साथ हमारे न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से राज्य के सुदूर पूर्व एरियाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। हमारे द्वारा छोटे छोटे बुकलेट्स, पैम्पलेट्स और विशिष्ट जानकारी रखने वाले लीफलेट्स बनाए गए हैं, जिनमें बहुत ही सरल और सहज भाषा में लोगों को बाल विवाह के संबंध में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में और बाल विवाह से होने वाले परिणामों के संबंध में जानकारी देने हेतु लोगों में वितरित किए जाते हैं। इसी के माध्यम से हमारे विगत वर्ष भी कई बाल विवाह रुकवाए गए हैं और इस वर्ष भी हमारे द्वारा इस संबंध में अप्रैल माह से ये कैंपेन संपूर्ण राजस्थान में संचालित किया जाएगा।
तो शीता मलानी जी, आप आए अपने बाल विवाह निषेध अधिनियम और उसके कानूनी पक्ष और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है,
वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है,
लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है
और वो भी बिल्कुल मुफ्त।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज।
अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें
या टोल फ्री नंबर 1500 पर फोन करें।
कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे लक्ष्मी नारायण मीणा और प्रस्तुति सहयोग रहा राजेंद्र सिंह डारा का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।